हर किसी के पेरेंट्स उन्हें कई लाइफ एडवाइस देते हैं कि बेटा दुनिया ऐसी होती है और तुम्हें उसमें इस तरह से बिहेव करना है। बट वॉट इफ आपके पेरेंट्स की ज्यादातर एडवाइस अब रेलिवेंट ही ना हो, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें ये चीज़ बोली है कि अगर हम सबका भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। लेकिन आज के समय पर अगर एक इंसान ऐसा है जो सबका भला चाहता है और वो खुद बहुत ज़्यादा भोला है, ऐसा इंसान सबसे ज़्यादा पीछे रह जाता है। अगर आज के समय पर आप एक कूल और पॉपुलर लोगों के ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो लेकिन आप टॉक्सिक नहीं हो, आपके अंदर विक्टिम मेंटेलिटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आप अपनी फैमिली के साथ आप अपने घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो आपके और एक पॉपुलर इंसान के बीच में कुछ कॉमन होएगा ही नहीं, आप एक दूसरे से रिलेट भी नहीं कर पाओगे। आजकल अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो और आप किसी भी मस्ती वाली अपॉर्चुनिटी को ना बोल देते हो, जैसे जब भी आपका कोई दोस्त आपसे पूछता है कि मस्ती करने चले, आप बोलते हो नहीं, पार्टी करने चले नहीं, हैंग आउट करने चले नहीं, एक बस राउंड मार के आ जाते हैं नहीं। जब भी आप अपने सो कॉल्ड दोस्तों को ये बात बताते हो कि मैं अपने किसी गोल पर काम कर रहा हूँ और वो आपको अंडरस्टैंड करने के बजाय आपसे बात करना ही कम कर देते हैं बिकॉज आप उतने कूल नहीं हो, आप उतनी मेमोरीज नहीं बना रहे हो, तो ऐसी मॉडर्न प्रॉब्लम्स के थ्रू कैसे नेविगेट करें हम, जहाँ पर लोग हमारे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हर चीज़ को ही कैजुअल बना दें। कैजुअल सेक्स, कभी भी पार्टी कर लो, लाइफ लॉन्ग वो एक पार्टी जीना चाहते हैं बजाय काम करने के और खुद को कुछ बनाने के। तो करें क्या हम? स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर वन से, मेंटेन योर इनोसेंस। सी, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिलेंगी। जिन लोगों से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ आपके मुश्किल समय में खड़े रहेंगे, जैसे ही आपका मुश्किल समय आएगा वैसे ही वो लोग सबसे पहले आपसे दूर भागेंगे। जिन लोगों को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वही लोग एक दिन आपको धोखा देकर चले जाएंगे और आपका बहुत बार दिल टूटेगा। लेकिन अगर आप इतना पेन झेलने के बाद भी खुद को दूषित नहीं होने देते हो, अगर आप इतना पेन झेलने के बाद भी यूनिवर्स को ये बोल पाते हो दैट यू फेल टू मेक मी हर्टफुल एंड आई एम स्टिल फुल ऑफ लव, मैं अभी भी प्यार करने से डरता नहीं हूं और अभी भी मैंने नफरत को अपने ऊपर विजय नहीं हासिल करने दी है, अगर आप ये बोल सकते हो इतना पेन झेलने के बाद, इतना ट्रॉमा झेलने के बाद भी, दैट्स हाउ यू नो दैट यू विल विन एट लाइफ। बिकॉज अगर आपका एक दूसरा वर्जन है जिसको जरा सा ही हर्ट मिलते ही, जरा सा ही ट्रॉमा मिलते ही, जरा सा ही धोखा मिलते ही वो बोलता है कि अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, अब मैं डर चुका हूं, अब मैंने खुद को बंद कर लिया, अब मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा, अब मैं किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करूंगा क्योंकि एक बार किसी ने मेरे को धोखा दे दिया, तो ये बंद इंसान अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को ही लिमिट कर लेता है और ये एक्चुअल में लोगों को समझना बंद कर देता है। बिकॉज अगर हम दूसरों की गंदगी को समझना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को साफ करना पड़ेगा। अगर मैं खुद पूरा दूषित हूं, मेरे अंदर इतने ज्यादा ओपिनियंस भरे हुए हैं, मेरा खुद ट्रॉमा चल रहा है, मैं खुद पास्ट में बैठा हुआ हूं, तो मैं दूसरे को एज इट इज कैसे देख पाऊंगा कि उसकी असली मोटिवेशन क्या है? और किसी की भी असली मोटिवेशन देखने के लिए और खुद को बचाने के लिए किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी पेन से, मुझे खुद को साफ रखना पड़ेगा और मेरे को रिजेंटफुल नहीं होना होगा। ये एक्चुअल तरीका होता है लोगों की साइकोलॉजी को समझने का कि उनके दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है और वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनोसेंस मेंटेन करने का मतलब यह है कि कोई भी मेरे को यूज कर ले और मैं कुछ बोलूं ही ना, नहीं, दैट्स नॉट इनोसेंस, दैट्स स्टूपिडिटी। इनोसेंट होने का मतलब यह है कि कोई भी आपको हर्ट करके जा रहा है आप उसको समझ पाते हो कि अच्छा ये हुआ मेरे साथ, ये मेरी गलती थी, और आप उस गलती को रिपीट नहीं करते हो, बट एट द सेम टाइम आप खुद को गुस्से से, कड़वाहट से नहीं भर लेते हो। आप फिर रिलेशनशिप्स में, प्यार में, बिजनेस पार्टनरशिप में, किसी पर भी रिलेटिव्स में ट्रस्ट करना बंद नहीं करते हो। आपके अंदर फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं, एक इंसान ऐसा है, दो इंसान ऐसा है, तीन इंसान ऐसे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं ऐसा नहीं हूं तो मेरे को पता है कि और भी लोग मेरे को इवेंचुअली मिल जाएंगे जो मेरी तरह ही साफ होंगे। नंबर टू, डू नॉट स्लीप अराउंड। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके पास ऑप्शंस का होना एक अच्छी बात होती है, बिकॉज अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ हुकअप करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है बिकॉज आप इतने सारे लोगों के बीच में से एक परफेक्ट इंसान को या फिर एक अच्छे इंसान को जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो उसको चूज़ कर सकते हो कि मैं इसको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ या फिर इसके साथ मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ या फिर इसको मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तो ऑप्शंस होना, अट्रैक्टिव होना, डिजायरेबल होना, ये अच्छी चीज़ होती है। और जो इंसान ये बोल रहा होता है कि यार मैं तो हुकअप कल्चर का पार्ट नहीं हूँ, बट एक्चुअल में उसको कोई डिज़ायर ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा इंसान अच्छा इंसान नहीं है, उसके पास बस ऑप्शंस की कमी है। तो पहले खुद के ऊपर काम करो ताकि लोग आपको एक्चुअल में डिज़ायर करें और आपके साथ कुछ करना चाहें। लेकिन सोचो अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन वो इस पावर को अच्छाई के लिए यूज़ करने और एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के बजाय वो इस पावर का मिसयूज़ करता है लोगों से प्लेजर निकालने के लिए। जस्ट बिकॉज उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो वो कैजुअल सेक्स करता है, वो हुकअप्स करता है, तो ऐसा इंसान बेसिकली खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। बिकॉज जब भी आप खुद को ये कन्विंस करने की भी कोशिश करते हो कि मैं दूसरों के साथ इस लेवल पर इंटीमेट हो सकता हूं बिना उनसे एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाए, तब बेसिकली आपको खुद को इस चीज में बिलीव करने के लिए अपनी अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा गिराना पड़ता है। बिकॉज ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप किसी के साथ सेक्स कर लो, आप इतना ज़्यादा इंटीमेट हो जाओ और आपको इमोशनल कनेक्शन की कोई नीड ही ना हो। और तभी ये भी स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि जिस इंसान के बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उसके एक हैप्पी और हेल्दी मैरिज में रहने के चांसेस गिरते चले जाते हैं। और ये चीज़ फीमेल्स में ज़्यादा होती है, बट मेल्स भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। कहीं आप सोचो कि मेल्स ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं। प्रोमिस्क्युइटी फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, इट इज़ वेरी बैड, बिकॉज आप किसी से बॉन्ड ही नहीं कर पाते एक सर्टेन पॉइंट के बाद। जितने ज़्यादा आपके सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे उतना ही आपकी हेल्दी और हैप्पी मैरिज के चांसेस गिरते चले जाते हैं। और ऊपर से जस्ट बिकॉज आप दूसरे लोगों को बस ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर की तरह देख रहे हो कि इसके पास तो कुछ और है ही नहीं, मैं इससे और क्या ही लूँ, तो ये चीज़ भी दूसरी चीज़ों में कैरी फॉरवर्ड होती है। बिकॉज अगर आप खुद की अवेयरनेस को इतना ज़्यादा गिरा देते हो कि ये इंसान तो बस इतना ही है, तब आप एक्चुअल इंसान को नहीं देख रहे होते हो, आप बस एक प्लेजर देने वाली एंटिटी की तरह उसे देख रहे होते हो और आप खुद को भी उसी लेवल पर ले आते हो कि मैं भी तो बस इतना ही हूँ। सो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बिना समझे, बिना ये समझे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, मैं किस तरह से लोगों को देखना शुरू कर दूंगा, किस तरीके से मेरा ब्रेन वायर हो जाएगा, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये बेटर है कि अभी के लिए उसको डिले कर दो और पहले मैच्योरिटी हासिल करो। नंबर 3, ऑलवेज कैरी योर डीपेस्ट रियलाइजेशन। अपनी लाइफ को एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस की तरह देखो, जहां पर जो भी आप पास्ट में कोई लेसन सीखते हो आपका हर अगला स्टेप उसी लेसन के ऊपर बिल्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में आपने कोई गलती की या फिर आपको कोई चीज़ काम करते हुए देखी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे काम करती है और आपको लगता है कि आपको वो लेसन मिल चुका है। लेकिन हम इंसान कुछ ऐसे हैं कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको सेम पास्ट वाली सिचुएशन में दोबारा प्लेस करा जाए तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि आप वही सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट कर दोगे। इसी वजह से जब भी आपको कोई बहुत डीप रियलाइजेशन मिलती है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसा हूं, दुनिया ऐसे काम करती है, रिलेशनशिप्स ऐसे काम करते हैं, पैसा इस तरीके से काम करता है, राइट इट डाउन। और जब भी कोई इवेंट ऐसा होता है जो आपकी उस रियलाइजेशन को कन्फर्म कर देता है, उसको भी उसके साथ लिखो, ताकि आप जब भी किसी इंसान से बात कर रहे हो और आप उसको बता रहे हो कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, आपके पास 100 एग्जाम्पल्स हों कि मैं इस चीज़ में इसलिए विश्वास करता हूँ, ये चीज़ इसलिए सही है, तब वो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी, ना कि किसी बुक की, ना कि किसी आपके गुरु की, वो आपका लिविंग एक्सपीरियंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरी लाइफ की डीपेस्ट रियलाइजेशन ये है कि सच बोलो। जब भी तुम झूठ बोलोगे या फिर जब भी तुम कुछ गलत काम करोगे, कहीं ना कहीं से लोगों को वो चीज़ पता लग जाती है। मैंने शुरू से ये बोला है, कई सालों से मैं आपको ये चीज़ बोलता रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ मैंने बार बार होते हुए देखी है कि जब भी आप झूठ बोलते हो, जब भी आप कोई गलत काम करते हो, तो सच एक ऐसी चीज़ है जो अंधेरे में रह ही नहीं पाती है। सच को अटेंशन चाहिए होती है, सच को लाइमलाइट चाहिए होती है, सच सफोकेट होता है जब भी उसको छुपाया जाता है, सच का दम घुटता है और वो कोई ना कोई छोटी सी जगह ढूंढ लेता है बाहर आने के लिए, और सारा खुलासा वहीं का वहीं हो जाता है। इसी वजह से अगर आप एक बार भी स्लिप कर जाते हो, एक बार भी फिसल जाते हो, एक बार भी कोई गलत डिसीजन ले लेते हो और ये सोचते हो कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, 100% किसी ना किसी वे में आपकी लाइफ गलत मोड़ ले लेगी। जैसे इस चीज़ के बारे में मेरे को बात नहीं करनी चाहिए, बट कुछ हफ्तों पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, क्या आपका ओपिनियन है। कंट्रोवर्सी थी किसी स्कैम के बारे में, आपको पता है मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, और नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। एज माय ऑडियंस मैं आपको ये भी बोलूँगा कि कमेंट्स में भी उनका नाम मत लिखो, बिकॉज हम कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते, हम किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहते, हम बस किसी इंसिडेंट से ये देखना चाहते हैं कि ये मेरे बारे में क्या बताता है, क्या सीखूँ मैं इस चीज़ से। तो स्कैम वाली कंट्रोवर्सी हुई, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, और उसके बाद कुछ दिनों बाद एक और कंट्रोवर्सी आई कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ वायलेंस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है। और ये चीज़ देख के मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, एक इंसान के पास चाहे जितनी मर्जी नॉलेज हो, कितना मर्जी ज्ञान हो, अगर उसको गीता की भी समझ है, हर चीज़ की उसको समझ है, फिर भी टाइम टू टाइम उसके पास शैतान आता है और उसको लुभाने के लिए कोई ना कोई ऑफर देता है कि तुम ये चीज़ भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट भी ले सकते हो, इस तरीके से भी बिहेव कर सकते हो और किसी को पता नहीं लगेगा। तुम्हारे पास दुनिया भर का ज्ञान है, तुम्हारे पास दुनिया भर की पावर है, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। जब एक इंसान में ये आ जाता है कि मेरे को कोई चीज़ पता है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना पावर है, तब वहाँ पर स्लिप अप करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज एरोगेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ। बट दिस इंसिडेंट अगेन कन्फर्म्ड कि सच कभी भी नहीं छुपता, कोई ना कोई वो जगह निकाल लेगा, कोई ना कोई वो रास्ते से बाहर आ जाएगा और सबको पता लग जाएगा आप एक्चुअल में कौन हो। और ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं बस एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे को लगती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी ये सोचो उस इंसान के बारे में या फिर आप मस्ती करो उसके नाम को लेके, नहीं। हमें बस समझना है कि ठीक है, मैं क्या सीखूँ इस चीज़ से, मेरे बारे में ये चीज़ क्या बोलती है। एज माई ऑडियंस, आपको ये नहीं करना कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी इंसान कोई गलती करता है तो हम उसका मजाक उड़ाएं, नहीं। हमें सीखना है कि इसने क्या गलती की, बिकॉज कभी ना कभी ये गलती मैं भी कर सकता हूँ, कभी ना कभी शैतान मेरे पास भी आएगा ऑप्शंस लेके कि तुम शॉर्टकट भी ले सकते हो, तुम कोई गलत काम भी कर सकते हो और लोगों को ये पता नहीं लगेगा, लेकिन आपने अपने दिमाग में ये रखना है कि पता लग जाता है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार यही सेम चीज़ देखी है कि कोई भी इंसान अगर कोई गलत काम करता है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो, चाहे वो ऐसा कोई पब्लिक इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, इतनी बार मैंने यही सेम चीज़ देखी है कि अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, अगर कोई इंसान किसी को तंग करता है, किसी को हर्ट करता है, कुछ गलत काम करता है, तो वो सच बाहर आ जाता है। इट डजंट मैटर उसके पास कितना पैसा है, कितनी पावर है, कितना मर्जी उसको दुनिया भर का ज्ञान हो, रूल्स रूल्स होते हैं और ये यूनिवर्स के रूल्स हैं जिसको हम बेंड नहीं कर सकते हैं। सच जो है वो यूनिवर्सल लॉ है और सच बाहर आता है। सच का जो डिफॉल्ट पोजिशन होती है वो होती है कि वो खुले में घूमता है। सच कभी भी छुप के रह ही नहीं सकता है, सच हमेशा एक्सेसिबल होता है हर इंसान को। तो इस तरीके से आपने अपनी हर डीपेस्ट रियलाइजेशन को अपने साथ कैरी करना है, हर समय आपको उसको मंत्र की तरह जाप करना है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, ये चीज़ ऐसे ही होती है। बिकॉज जिस मोमेंट पर आप अपनी डीपेस्ट रियलाइजेशन को भूल जाते हो, आप ससेप्टेबल हो जाते हो ऐसी बकवास हरकतें करने के लिए और आप सोचते हो कि किसी को पता नहीं लगेगा, बट पता लग जाता है। लेसन नंबर 4, गो थ्रू अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स विद योर पेरेंट्स। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में जितना भी प्यार हो या फिर जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, वो दूसरे लोगों को थोड़ी पता लगता है कि इनके घर में हो क्या रहा है, बट बात यह है कि सब पता लगता है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करते हैं मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, वही हमें इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेशनशिप्स और वही हमें इंट्रोड्यूस करते हैं प्यार के आइडिया से, वही बताते हैं कि ये तीनों चीज़ें कैसे काम करती हैं, यानी एक मर्द होने का या फिर औरत होने का मतलब क्या होता है, एक रिलेशनशिप में हमें कितना ट्रस्ट करना चाहिए, कितना डाउट करना चाहिए, किस तरीके से एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, और प्यार किस तरीके से करते हैं, कितने डर में आप रहते हो, कितना आप दूसरे को देते हो, कितना आप डिमांड करते हो, ये सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। और जब भी एक फैमिली काफ़ी हेल्दी होती है, बच्चों को पेरेंट्स से काफ़ी अच्छा अटेंशन और प्यार मिला हुआ होता है, तब वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं, वो गलत चीज़ों में प्यार नहीं ढूंढते, वो गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जो बार बार किसी न किसी चीज़ से अडिक्ट हो जाते हैं, उनको एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है ये चीज़ उन्हीं लोगों में देखी जाती है जिनकी फैमिली में कुछ ना कुछ ट्रॉमा, प्रॉब्लम, लड़ाइयाँ, बचपन में ये सब चीज़ें चल रही होती थी। बिकॉज जब भी एक घर में प्यार, रिलेशनशिप या फिर मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के आइडियाज़ डिस्टॉर्टेड हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि एक लड़का औरत कैसे बिहेव करते हैं, प्यार कैसे करते हैं या फिर एक रिलेशनशिप को हेल्दी वे में कैसे मेंटेन करते हैं, अगर उन्हें ये पता ही नहीं है तो उनके बच्चे भी इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे और एक लड़का उतना मैस्कुलिन नहीं होगा, एक लड़की उतनी फेमिनिन नहीं होगी और उनको प्यार करना नहीं आता होगा, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बनाएंगे, उनकी अटैचमेंट अनहेल्दी होगी। और जब भी बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरे को उतना प्यार नहीं करा, उन्होंने मेरे को उतनी अटेंशन नहीं दी, तब हम किसी न किसी वे में उनसे रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी गलत दिशा में जाके। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो लड़के होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिस्कस हो जाती है, वो ये सोचती हैं कि अगर मैं दूसरे गंदे लड़कों के साथ घूम रही हूँ तो किसी तरीके से मैं पापा पर रिवेंज ले रही हूँ, या फिर एक लड़का होता है वो बोलता है कि मैं अपनी लाइफ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने कोई भी मेरे को एडवांटेज नहीं दी, ये सारी चीज़ें तभी मैनिफेस्ट कर रही होती बिकॉज पेरेंटिंग की प्रॉब्लम होती है। बट ये चीज़ जब एक बार आपको समझ आ जाती है कि अच्छा मेरी पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं थी और ज़्यादा लोगों की पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो अब करें क्या, अब हम ये करेंगे कि हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बिकॉज हमें ये चीज़ समझ आ चुकी है, हम अवेयर हो चुके हैं, और हम क्या करेंगे, हम अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे या फिर अगर वो ज़िंदा नहीं है तो हम अपने दिमाग में उनसे बात करेंगे, या फिर अगर वो हमसे दूर रहते हैं तो हम उन्हें कॉल करेंगे एंड वी विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट, या फिर हम बस उन्हें अपनी साइड बता देंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या फिर आपसे प्यार करती हूँ, बट ये आपकी गलती थी, ये आपने इस तरीके से किया। और मे बी वो फिर इतना ओपन अप हो जाए एक पॉइंट के बाद, बिकॉज फर्स्ट टाइम में शायद वो ओपन अप ही ना हो, वो आपका फ़ोन कर दे या फिर वो आपको पागल बोले, बट ओवर टाइम अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो इन चीज़ों को, तो वो बोलते हैं कि बेटा मेरी ये मजबूरी थी, जितनी हमारे अंदर समझ थी उतना हमने तुम्हें दे दिया, सॉरी। ये पॉइंट, एक पॉइंट के बाद आप इस जगह पर पहुंच सकते हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि यार मेरे पापा तो मेरे से बात नहीं करते, मेरी मम्मी से तो मैंने कभी इतने डीप जाके बात की नहीं, या फिर वो इतने टॉक्सिक हैं, वो तो बात बात पे मेरे को पीटते हैं। एक पॉइंट के बाद बंदा मेल्ट हो जाता है जब उसे प्यार दिया जाता है, बिकॉज जब भी एक इंसान हेटफुल होता है या फिर एक इंसान बहुत गुस्से वाला होता है, क्या डिमांड कर रहा होता है, वो ये दिखा रहा होता है कि मेरे को कभी भी प्यार नहीं मिला। तो जब भी आपके पेरेंट्स आपकी सुने ना, या फिर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं, पेरेंट्स टॉक्सिक हो रहे हैं, कितना ये यू नो बोलने में भी अजीब लगता है, बट ये चीज़ होती है कि आपके पेरेंट्स आपकी नहीं सुन रहे हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, गिव देम लव, शो देम लव, रोते रोते भी प्यार दो उन्हें, और एक पॉइंट के बाद ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस. अगर वो ज्यादा फिजिकली अब्यूजर है बात अलग है, अगर वो बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, सालों से आप यही चीज करते आ रहे हो और वो मान नहीं रहे हैं, बात अलग है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बात सॉल्व हो जाती है. और जो भी आपके अंदर रिवेंज लेने का गलत रिलेशनशिप का आइडिया होता है कि मैं ये सब करूंगा बिकॉज मेरे साथ ये सब हुआ, वो चीज़ें चली जाती है और आप वापस से खुद को क्लीन कर पाते हो. आप बस यही नहीं सोच रहे होते कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ये किया तो मैं इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, ये चीज़ गिर जाती है. जो हमारे अंदर एक नेसेसिटी होती है, एक नीड होती है कि हम किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करें. अगर हमारे पेरेंट्स ने हमारे को उतनी एडवांटेजेस नहीं दी थी तो हम ये सब चीज़ें अलाउड है, हमें चीट करना अलाउड है, या फिर हमें बुरे बनना अलाउड है, या फिर हमें बस एक्सक्यूज़ मारना अलाउड है, ये सारी चीज़ें गिर जाती हैं. और जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, हम अपनी इनोसेंस वापस से मेंटेन कर पाते हैं. लेसन नंबर 5, डोंट गेट लॉस्ट इन डेली टास्क एंड प्रॉब्लम्स. कॉमन एडवाइस यही दी जाती है कि बड़ा सोचो और जितना हो सके उतना काम करो. इवन मेरे मैसेज का एक बहुत बड़ा पार्ट यही है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल और आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो. लेकिन अगर हम ये जो बड़ा सोचने वाली, काम करने वाली, कभी ना रुकने वाली एडवाइस है, इसको बैलेंस नहीं करते हैं, बस कभी रुक कर, ठहर कर, आराम करने वाली एडवाइस से, तो जो भी हमें अचीव करना है अपनी लाइफ में, हम उसे अचीव नहीं कर पाते. अगर हम कभी भी खाली नहीं बैठ सकते, अगर हम कभी भी खुद को एंकर नहीं कर सकते, खुद को ग्राउंड नहीं कर सकते हैं, तो हमारी लाइफ हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी और एक पॉइंट के बाद हम बर्नआउट हो जाएंगे और हम सोचेंगे कि क्या चीज़ इनकम्प्लीट रह गई, क्या चीज़ अधूरी है मेरे में. अगर आप बिना फोन के, बिना अपने थॉट्स के, बिना किसी फैंटेसी के, बिना किसी टेंशन के, बिना अपने गोल्स के कि मैं 10 साल बाद क्या करूंगा, 20 साल बाद, 30 साल बाद, अगर आप लोगों से दूर नहीं रह सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बिकॉज एक पेंटिंग को इमेजिन करो जहां पर आप बस पीक बनाए जा रहे हो, मतलब एक पहाड़ है वो ऊंचा होता चला जा रहा है और उस पेंटिंग में कुछ और है ही नहीं. उस पेंटिंग में पहाड़ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए कोई वैली ही नहीं है, कोई घाटी नहीं है, बस एक पहाड़ है. क्या आप उसे अप्रिशिएट कर पाओगे? एक पहाड़ की ब्यूटी को हम तभी वैल्यू करते हैं जस्ट बिकॉज पहाड़ के साथ घाटियां होती हैं. पीक की वैल्यू तभी होती है बिकॉज उसके साथ डेप्थ भी होती है. लाइट की वैल्यू तभी होती है बिकॉज डार्कनेस एग्जिस्ट करती है. और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम अपनी स्पीच को भी देखें, अगर मैं बस धड़ 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 बोलता जाऊं और बीच में मैं कभी भी रुकूं भी ना, तो जो भी मैं इंपैक्टफुल सेंटेंस बोलूंगा, मेरी बातों में चाहे जितना मर्जी वजन हो, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने प्रॉपर पॉजेज नहीं लिए और मैंने आपको टाइम नहीं दिया जो भी मैंने बात बोली उसको अप्रिशिएट करने का, उसको इंटरनलाइज करने का, तो चाहे वो जितनी मर्जी इंपैक्टफुल बात हो, वो कभी भी उतना इंटेंसिटी कैरी ही नहीं करेगी आपके दिमाग में. आप बोलोगे कि हाँ सर, हमने कोई नॉर्मल सी बात बोली है. इवन अगर आप ओशो की बातें सुनो, ओशो किस तरीके से बोलते थे, उनकी स्पीच ऐसी होती थी कि जब भी उन्होंने कोई इम्पैक्टफुल सेंटेंस बोला, कोई भी बात बोली, प्रॉपर पॉज है वहाँ पे और लंबा पॉज है ताकि उन्होंने जो भी बोला अब प्रोसेस कर पाओ कि अच्छा कितनी गहरी बात बोली है. हम किसी भी चीज़ को सिर्फ तभी अप्रिशिएट कर पाते हैं जब टाइम टू टाइम हम उससे थोड़ी दूरी बनाते हैं. अगर आप पूरे दिन काम कर रहे हो, पूरे दिन आपके दिमाग में गोल्स चल रहे हैं, या फिर इवन अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो लेकिन आप टेंशन से भरे हुए हो, आप कभी भी अपने आप को ब्रेक ही नहीं दे रहे हो. आप कभी भी रोज़मर्रा के काम, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, इनसे अगर थोड़ी देर के लिए दूर नहीं हो रहे और मी टाइम नहीं निकाल रहे हो, अगर आप बस देख नहीं रहे हो कि अब मेरे दिमाग में चलता क्या है, तो आपको सोने में प्रॉब्लम होगी, आपको एक्चुअल में किसी भी चीज़ पर फोकस करने में प्रॉब्लम होगी, आपके थॉट्स प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, इतना ज़्यादा भरे रहोगे, आप ओवरथिंक करते रहोगे. आप बोलोगे कि यार मैं डिप्रेस फील करता हूँ, लेकिन आपको डिप्रेस फील करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा. ये प्रॉब्लम हो जाती है जब भी हम अपने साथ अकेले नहीं बैठते बिना कुछ काम के. लेसन नंबर 6, विमेन टेस्ट मेन मोर एंड मेन लर्न टू पास दोज टेस्ट्स. ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जब भी मैं बात करता हूँ हमेशा मेरे को बहुत सारी हेट मिलती है. कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे गॉड का टॉपिक हो गया जो कि आने वाला है, एक मेल फीमेल वाला टॉपिक हो गया कि उनकी साइकोलॉजी कैसे डिफर करती है और क्या चीज़ें गलत हो रही हैं. कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर मेरे को पता है कि हेट मिलनी है, बट उन पर बात करनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है. और जस्ट बिकॉज आई हैव कन्विक्शन, मैंने इतनी बार देख लिया है इन चीज़ों को, तो उस बारे में मैं मुँह बंद नहीं रख सकता हूँ अपना. तो आजकल हो क्या रहा है, हम ये देख रहे हैं कि फीमेल्स के स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं, फीमेल्स उतना टेस्ट नहीं कर रही हैं मेल्स को. बिकॉज फीमेल्स क्यों टेस्ट करती है, हम हमेशा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को इंटरनलाइज नहीं किया कि फीमेल्स ज़्यादा चूजी होती हैं बिकॉज रिप्रोडक्शन की कॉस्ट उन्हें बेयर करनी पड़ती है. बट आज के समय पर जस्ट बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और फीमेल्स के पास इतनी फ्रीडम है, तो वो फ्रीडम को इक्वेट कर रही हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. और स्पेशली जैसे हमने ट्रॉमा वाली बात की कि मेल्स के बीच में कैसे दिखता है ट्रॉमा, कि अगर मेल्स को प्यार नहीं मिले तो वो कैसे एक्ट करते हैं और फीमेल्स को प्यार नहीं मिले तो कैसे वो एक्ट करती हैं. जब एक फीमेल को प्यार नहीं मिलता तब वो अपनी वैल्यू को प्रिजर्व नहीं करती और वो ये सोचती हैं कि अगर मेरे को अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला तो शायद उसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कोई कमी है और मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो मैं खुद को पनिश करूं बाहर जाके, मैं सिगरेट पीऊं, मैं दारू पीऊं, मैं लड़कों के साथ रहूं जो कि मेरे लिए सही नहीं है, मैं खुद को पनिश करूं इन चीज़ों में, मैं टॉक्सिसिटी में खुद को इन्वॉल्व कर लूं बिकॉज आई डिजर्व दैट। ये उनकी इंटरनल रीजनिंग होती है जो कि बहुत अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे होती है और वो कभी भी आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद देम। लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ भी एक ये चीज़ होती है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उतनी अटेंशन नहीं दी, मेरे को प्यार नहीं दिया, तो ठीक है मेरे अंदर कुछ कमी है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। फीमेल्स को जब प्यार नहीं मिलता तब वो ये बोलते हैं कि मैं अपनी वैल्यू प्रिजर्व ही क्यों करूं, और मेल्स को जब प्यार नहीं मिलता तब वो ये बोलते हैं कि मेरी वैल्यू तो कोई है ही नहीं, मैं अपनी वैल्यू क्यों ही क्रिएट करूं। इस चीज़ को बहुत डीपली अपने अंदर इंटरनलाइज करो कि मेल्स अपनी वैल्यू बनाते नहीं हैं और फीमेल्स अपनी वैल्यू प्रिजर्व नहीं करती हैं जब उनको प्यार नहीं मिलता। इसी वजह से आजकल हम ये देख रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन वो अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं गलत लोगों के साथ हैंग आउट करके या फिर खुद को गलत आदतों में उलझा के। अगर हम खुद से ये क्वेश्चन करें कि एक वाइस पेरेंट इस तरह की सिचुएशन को कैसे प्रिवेंट करेगा, तो एक वाइस पेरेंट एक लड़के को हमेशा ये समझाएगा कि खुद को डेवलप कर, खुद की वैल्यू को बढ़ा, स्किल्स एक्वायर कर, नॉलेज एक्वायर कर, जितना तू दुनिया को समझ सकता है उतना दुनिया को समझ, आर्टिकुलेट बन, और अपनी वैल्यू तू जितनी ज़्यादा बढ़ाएगा उतना तेरे को पैसा मिलेगा, उतना तेरे को तेरी डिज़ायर्ड जो लड़की है वो मिलेगी, उतना तू एक अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर पाएगा और उतना ही तू स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएगा। एक लड़के को जो अच्छी एडवाइस होती है वो यही होती है कि तू अपनी वैल्यू को बढ़ा। लेकिन अगर एक वाइस पेरेंट एक लड़की को कोई एडवाइस देगा तो वो ये होगी कि जितना हो सके उतना तू लड़कों को टेस्ट कर। कभी भी ये मत देख कि कोई लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम है, कोई लड़का बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, इन चीज़ों को हटा और फिर देख कि क्या बचा है उस लड़के के अंदर, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसका करेक्टर है, क्या एक्चुअल में जो भी वो बोलता है वो एक्चुअल में है या फिर वो बस ऐसा होने का ढोंग कर रहा है। बिकॉज लड़के ये करते हैं, जब भी उन्हें कोई लड़की चाहिए तब वो एक मास्क पहन लेते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। और जो भी एक फूलिश पेरेंट होता है वो हमेशा ये देखता है कि अच्छा लड़के वालों के पास पैसा है, तो अपनी बेटी को मनाते हैं कि लड़के वालों के पास पैसा है बेटा, तू बहुत खुश रहेगी, तू बहुत अच्छे से रहेगी, तो तू शादी कर ले। और जस्ट बिकॉज उस लड़की को, उस लड़के को टेस्ट करने का मौका नहीं मिला होता, शादी के बाद क्या होता, शादी के बाद एकदम से लड़के का बिहेवियर चेंज हुआ पड़ा होता और लड़की ये सोचती है कि ये कैसे हो गया। वो ऐसे ही होता है बिकॉज जब भी एक लड़की एक लड़के को टेस्ट नहीं करती है तब फैमिली डगमगाने लगती है और फैमिली के डगमगाते ही पूरी सोसाइटी और पूरी सिविलाइजेशन डगमगाने लगती है। यहीं से एक सिविलाइजेशन का डाउनफॉल शुरू होता है कि फीमेल्स टेस्ट नहीं कर रही हैं, फीमेल्स के स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं और मेल्स कुछ भी कर रहे हैं और उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। सो फीमेल्स को मैं ये एडवाइस दूंगा कि कीप योर स्टैंडर्ड्स वेरी हाई। फीमेल्स को कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि अगर मैंने अपने स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हाई रखे, इतनी ज़्यादा मैंने डिमांड्स की, अगर मैंने इतने ज़्यादा बैरियर्स क्रिएट कर दिए तो शायद कोई भी इंसान इन बैरियर्स को क्रिएट ही ना कर पाए, विच इज़ ट्रू। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपके 10 चेकबॉक्स आपने बना रखे हैं कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए मेरे पार्टनर में, तो आप एक दो कई चीज़ों को सैक्रिफाइस कर सकते हो, दैट्स नॉर्मल। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं डिमांड ही नहीं कर सकती या फिर मेरे को अपनी डिमांड्स बहुत हार्शली गिरानी पड़ेंगी, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। बिकॉज जब भी आपके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं आप लड़कों को ये सिग्नल करते हो कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो, और लड़कों को खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए। और जब भी इस चीज़ की कमी होती है सोसाइटी में तब सोसाइटी क्रम्बल करती है। सोसाइटी जब सक्सेस को टच करती है तब ज़्यादा फ्रीडम बढ़ती है, तब ज़्यादा लड़कियों के पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि आप गलत चॉइस लो, ऑप्शन का मतलब ये है कि ठीक है नाउ यू कैन मेक प्रॉपर चॉइस और आपको उतना फोर्स नहीं करा जाएगा। आज के समय पर लड़कियों को उतना फोर्स नहीं करा जाता जितना पहला करा जाता था, और उसका फ़ायदा अगर आप नहीं उठा रहे हो एज अ फीमेल देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। और एज अ मेल मैं आपको ये एडवाइस दूंगा दैट बी ओके विद बींग रिजेक्टेड। बिकॉज एक फीमेल एक लड़के को रिजेक्ट करके भी उसे टेस्ट ही कर रही होती है कि अगर मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, अगर मैं इसको ये बोलती हूँ कि तू मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, तू मेरे साथ हैंग आउट नहीं कर सकता, मैं तेरे को उतना पसंद नहीं करती हूँ, फिर मैं बस देखो एक फ्रेंड की तरह देखती हूँ, तो ये लड़का किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। वो ये देखना चाहती है कि जब भी मैं इसे नो बोलती हूँ, जब भी मैं किसी लड़के को नो बोलती हूँ, तो क्या वो बंदा फिर भी परसिस्टेंट रहता है, क्या वो बंदा फिर भी मेरी तरफ डेडिकेटेड रहता है। बिकॉज अगर वो इतना नहीं कर सकता कि मैंने ना बोली और वो भाग गया है, तो उसका मतलब ये कि वो या तो इनडिसाइसिव है, उसे पता नहीं है कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है और वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, उसे एक्चुअल में मैं चाहिए ही नहीं थी। और इनडिसाइसिव लड़का एक लड़की की नज़र में एक लूज़र होता है। या फिर अगर एक लड़का एक्चुअल में मेरे को चाहता था लेकिन फिर भी बस मैंने एक बार उसे ना बोला और वो चला गया, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने ड्रीम्स को भी कभी चेज नहीं करेगा, एंड अगेन ही इज अ लूजर। लेसन नंबर 7, हेटर्स आर द बेस्ट टीचर्स। कोई भी इंसान आपको सिर्फ दो ही वजहों से हेट कर सकता है। पहली वजह होती है साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन। और जस्ट बिकॉज ज़्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी मैं आपको डेफिनेशन देना चाहता हूँ। और ये डेफिनेशन आ रही है everydayhealth.com से। तो डेफिनेशन बोलती है, साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट पीपल सबकॉन्शियसली यूज इन ऑर्डर टू कोप विद अनवांटेड फीलिंग्स और इमोशंस। साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन इन्वॉल्व्स प्रोजेक्टिंग अनडिजायरेबल फीलिंग्स और इमोशंस ऑनटू समवन एल्स रादर देन एडमिटिंग टू और डीलिंग विद दोज अनवांटेड फीलिंग्स। यानी अगर मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, मेरे अंदर कोई डर है, कोई चीज़ ऐसी है जो बार बार मेरे को गुस्सा दिलाती है, लेकिन मैं उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहता कि ये मेरा फियर है, ये मेरी इनसिक्योरिटी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस डर को आपके ऊपर डाल देता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये फियर है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, मेरी ये कमी थोड़ी है। मैं उसे एडमिट ही नहीं करता कि ये मैं हूँ, और मैं उसे दूसरों की प्रॉब्लम बना देता हूँ कि ये तो दूसरे करते हैं। तो ये एक टाइप की हेट होती है, ये होती है प्रोजेक्शन। दूसरे टाइप की हेट होती है जहाँ पर एक्चुअल में आपके अंदर कोई कमी है, एक्चुअल में आप किसी चीज़ को या तो छुपा रहे हो या फिर आप उसे एडमिट नहीं कर रहे हो, और दूसरा इंसान पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि भाई जो तुम्हारी पब्लिक पर्सनैलिटी है, जो तुम बोल रहे हो कि ये मैं हूँ, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ भी है जो थोड़ी गंदी है या फिर जिसको तुम एड्रेस नहीं कर रहे हो, तो उसे तुम क्यों एड्रेस नहीं कर रहे हो, कोई फ्लॉ है, या तो उसको एड्रेस कर दो या फिर उसके ऊपर काम करो। ये होती है दूसरी टाइप की हेट, जिसमें एक्चुअल में कोई सब्सटेंस, एक्चुअल में कुछ ट्रुथ होता है। हेट करने का जो पहला तरीका होता है कि मैं आप पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसके थ्रू बेसिकली एक इंसान अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। बिकॉज अगर मेरे अंदर कहीं कमियाँ हैं और मैं अवेयर ही नहीं हूँ कि मेरे अंदर वो कमियाँ हैं, तो बेसिकली मैंने अपनी पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा हिस्सा सप्रेस कर रखा है। मैं कभी भी अपनी 100% पोटेंशियल को अनलॉक कर ही नहीं पाऊंगा। बिकॉज हम यूजुअली ये सोचते हैं कि जो भी हमारी पोटेंशियल होती है वो हमारी अच्छी क्वालिटीज से आती है, बट हमारी पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी डार्कनेस, हमारी बुरी क्वालिटीज से आती है। बिकॉज जिन भी चीज़ों को हम बुरा बोलते हैं कि ये मेरी एक बुरी आदत है, वो बेसिकली क्या होता है, हमारा गुस्सा, हमारी रिजेंटमेंट, हमारा ट्रॉमा, और इन चीज़ों में भी हमारी बहुत सारी पोटेंशियल अटकी हुई होती है। जब तक हम अपनी इन सारी मेमोरीज को, ट्रॉमा को, गुस्से को, रिजेंटमेंट को, फियर्स को, शेम को अपनाते नहीं हैं कि हाँ ये मेरी स्टोरी का पार्ट है, हाँ मेरे साथ ये हुआ था, जब तक हम इन चीज़ों को अपनाते नहीं और इन चीज़ों को डार्कनेस में रखते हैं कि कोई बात नहीं, इसके बारे में बात नहीं करनी मेरे को, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमारा दिमाग ये बोलता है कि जस्ट बिकॉज तू इन चीज़ों के बारे में अवेयर ही नहीं होना चाहता, तू इन चीज़ों की तरफ देख ही नहीं रहा है, तू इन चीज़ों से डरता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तेरी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में तेरी मदद करूंगा और मैं ये चीज़ तेरे को हर किसी में बाहर दिखाऊंगा तेरे से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे अंदर फियर ऑफ अबेंडनमेंट है, मेरी पेरेंटिंग कुछ इस तरीके की हुई थी कि मेरे को डर है कि लोग मेरे को ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे, फिर वो मेरे को छोड़कर चले जाएंगे, तो जब भी मैं किसी से फ्रेंडशिप करता हूँ, जब भी मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आता हूँ, मैं हमेशा उनसे लड़ता रहता हूँ कि तुम मेरे को उतना कॉल क्यों नहीं करते हो, उतना मैसेज क्यों नहीं करते हो, तुम मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, या फिर अगर उनका रिप्लाई लेट आ रहा है तब मैं उनसे लड़ जाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर फियर ऑफ अबेंडनमेंट है, और फिर मैं उनको ब्लेम करता हूँ कि तुम ऐसे हो, तुम मेरी केयर नहीं करते हो। और वो ये सोचते हैं कि यार सौरभ तो ऐसा है जो हमेशा लड़ता रहता है, वो तो नफरत से भरा हुआ है या फिर वो टॉक्सिक है। लेकिन जो भी टॉक्सिसिटी होती है, जो हेटफुल बिहेवियर होता है, जब हम उसे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, उसका मतलब यही होता है कि वो क्वालिटीज़ मेरी हैं जिनको मैं दूसरों पर चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज मेरा दिमाग बोल रहा है कि अगर तू खुद इस बारे में अवेयर नहीं होएगा, तू इन क्वालिटीज़ को खुद अपने अंदर नहीं ढूंढेगा, तो मैं इन क्वालिटीज़ को पूरी दुनिया के ऊपर लगा कर दिखाऊंगा। लेकिन हेट करने का जो सेकंड तरीका होता है, जहां पर कोई इंसान आपको ये बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर कोई फ्लॉ है और तुम उसे एड्रेस नहीं कर रहे हो, एडमिट नहीं कर रहे हो, तो वहां पर वो बेसिकली आपकी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो वो मेरी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का प्रोसेस है। अगर मैं किसी को बस ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, चाहे वो कितने भी अग्रेशन से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पर मैं उसकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जब भी आपको कोई हेट करता है, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उनके कमेंट्स को एनालाइज करो कि अच्छा क्या ये एक्चुअल में कोई चीज़ मेरे बारे में पॉइंट आउट कर रहा है या फिर ये चीज़ इसी के बारे में है। जितना आप हेटर्स को स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ेगी, आपकी पेशेंस भी बढ़ेगी, और आप लोगों से एम्पथाइज भी कर पाओगे जो आपके कॉन्शियसनेस के लेवल से नीचे हैं। लेसन नंबर 8, इफ यू आर गोइंग टू वॉर यू विल नीड गॉड बाय योर साइड। लाइफ के कई ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आप चाहे जितना मर्जी टेस्ट कर लो, आप उन्हें डिसप्रूव कर ही नहीं सकते। जैसे एपिसोड के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कितनी बार मैंने ये चीज़ देखी है कि जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है, जब भी कोई इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है, तब इवेंचुअली वो पकड़ा जाता है, या फिर इवेंचुअली जो भी वो सच दबाने की कोशिश कर रहा था वो सच कहीं ना कहीं से बाहर आ जाता है। तो इसी प्रिंसिपल की तरह और बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप टेस्ट करते हो, जो आप सीखते हो ओवर योर लाइफ। और जब आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू करते हो, जब आप सही रास्ते पर चलना शुरू करते हो, धीरे धीरे आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगता है। आपको अंदर ही अंदर ये चीज़ कंफर्म होने लग जाती है कि हाँ आप सही रास्ते पर हो। एंड दिस इज़ नॉट अ थॉट, दिस इज़ नॉट अ बिलीफ। मैं कभी जब भी मैं गॉड के बारे में बात कर रहा होता हूँ, मैं किसी बिलीफ के बारे में बात नहीं कर रहा होता, और ना ही मैं बिलीफ्स को सपोर्ट करता हूँ। जैसे मैंने एक रिसेंट कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी जहाँ पर मैं अपने वर्कशॉप को प्रमोट कर रहा था, मंक मोड वर्कशॉप को, और वहाँ पर मैंने गॉड के बारे में बात की थी कि जो थियस्ट हैं और जो एथियस्ट हैं, दे बोथ आर रॉन्ग, बिकॉज वो दोनों बस बिलीव कर रहे हैं किसी चीज़ में. एक बंदा बिलीव कर रहा है कि भगवान है, दूसरा बंदा बिलीव कर रहा है कि भगवान नहीं है. ये दोनों चीज़ें बस उसके सर में चल रही हैं, ये बस थॉट्स हैं, ये उसका एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन जब आप सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू करते हो, तब आपके अंदर एक एक्सपीरियंस उठना शुरू होता है, जो धीरे धीरे करके जितना आप गलत चीज़ों को ना बोलते जाते हो, जितना आप दूसरों की मदद करते हो, जितना आप सही तरीके से जीते हो. और ये आप ये पूछोगे कि यार ये सही तरीका होता क्या है, किसने बोला ये सही तरीका है, या फील कर पाते हो कि मैंने सही किया, या बहुत डीप इनसाइड फील कर पाते हो कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ या फिर मैं कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ, क्या मैं किसी का एडवांटेज उठा रहा हूँ अपना मतलब निकालने के लिए, या फिर मैंने बड़े पिक्चर में, बिग पिक्चर में कोई सही डिसीजन लिया. ये आप डीप इनसाइड आपको पता होता है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. तो जब आप ये चीज़ें करते हो तब आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गहरा बनता है. और ये एक्सपीरियंस एक थॉट नहीं होता. जब भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ में मानता हूँ या फिर किसी चीज़ में नहीं मानता, बस वो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो बहुत शैलो है. जैसे अगर मैं आपको प्यार का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको किसी से प्यार है, प्यार एक एक्सपीरियंस है, प्यार बस एक शब्द नहीं है. मैं बोल रहा हूँ लव, लव बना है चार अक्षरों से, बट लव अलग है और एक्चुअल जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो जब भी आप प्यार में होते हो, जब भी आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हो जिन्होंने इतने सारे सेक्रीफाइस करे आपके लिए, जब भी आप किसी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर के लिए, अपने पेट के लिए सोचते हो, तब जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो अपने अंदर, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है चार अक्षरों से. प्यार एक्चुअल में चार अक्षर नहीं है, मतलब लव जो है वो बस एक वर्ड नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है. सिमिलरली जब मैं गॉड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं कन्वेंशनल गॉड के बारे में बात नहीं कर रहा होता कि कोई मूर्ति है आसमान में, कोई है स्क्रिप्चर पढ़ लो, दिस इज नॉट माई गॉड. गॉड एक्चुअल में एक एक्सपीरियंस है जो तब आने लगता है जब आप कई चीज़ें सही करने लगते हो. लेकिन क्यों मैं इस एक्सपीरियंस को गॉड बोल रहा हूँ, क्यों मैं ये नहीं बोल रहा बस आप इंटेंस एक्सपीरियंस करने लगते हो, मैं इस चीज़ को गॉड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब आप किसी से प्यार में हो, तो जब आपको पता होता है कि कोई इंसान आपको प्यार करता है, तब डीप इनसाइड आप ये फील कर पाते हो कि हाँ, कोई इंसान मेरे को प्यार करता है और वो मेरे को फेवर करता है ओवर एवरीवन एल्स. और सिमिलरली जब आप सही दिशा में जाते हो, जब आप सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू करते हो और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पाते हो, आपको ये चीज़ फील होती है बहुत डीप इनसाइड कि एक इंसान से कोई बड़ी चीज़ है जो मेरे फेवर में है, एक इंसान से कोई बड़ी चीज़ है. प्यार से आपको कुछ बड़ा एक्सपीरियंस होता है, इतना ज़्यादा इंटेंस चीज़ है ये, और उसको वर्ड्स में पुट करना बहुत मुश्किल होता है. इवन मैंने इतना बोल दिया ये भी मेरे को बहुत बड़ी चीज़ लग रही है. और कई बार मैंने आपको प्रॉमिस किया कि गॉड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी, और उस वीडियो को बनाना इसलिए ही मेरे लिए हमेशा इतना मुश्किल होता है बिकॉज कैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूँ. आपको बस मैं वर्ड्स दे सकता हूँ. वर्ड्स जो है, वर्ड्स की ट्रांसमिशन जब हो रही है, जब मेरे मुँह से आपके कानों में कोई चीज़ जा रही है, आपके कानों से जब वो दिमाग में जाती है जो भी मैं बोलता हूँ, वो बस एक थॉट बन गया. थॉट अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है. और जब भी मैं बोल रहा हूँ कि गॉड आपको चाहिए अपनी लाइफ में, आपको गॉड के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूजा करनी है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको तालियां बजानी है, आपको भजन पढ़ने हैं. उसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ अभी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, आपको उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है. अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आपने अपनी पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना है, अगर आपने खुद को समझना है, तो आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, वरना कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा. और तभी जो एक वाइज पेरेंट होता है, स्पेशली एक वाइज फादर, वो हमेशा आपको ये एडवाइस देगा कि किसी भी चीज़ में बिलीव मत करो. भगवान में तुम्हें बिलीव नहीं करना है, भगवान को तुम्हें समझना है, भगवान को तुम्हें एक्सपीरियंस करना है, और तुम्हें भगवान के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है. और वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम कुछ पढ़ रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई घंटियां बजा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. भगवान का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत इंटरनल, बहुत पर्सनल, बहुत प्राइवेट चीज़ होती है, और उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करा जा सकता. मैं बस पॉइंट आउट करके बता सकता हूँ. जैसे लव जो है वो बस एक वर्ड है जो एक एक्सपीरियंस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं गॉड को यूज़ कर रहा हूँ कि गॉड बस एक वर्ड है जो किसी चीज़ की तरफ, किसी एक्सपीरियंस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. अगर आप बस वर्ड को एनालाइज करके बोलोगे कि हाँ मैं तो बिलीव नहीं करता, वट एवर, आप समझे ही नहीं हो कि मैं बोल कह रहा हूँ, आप फालतू की लड़ाइयाँ कर रहे हो. इससे बेटर ये होगा कि आप एक सही रास्ता चुनो, और जब जब आपके आगे शैतान आए और आपको ये बोले कि ये भी ऑप्शन है, एक गलत ऑप्शन भी है, एक शॉर्टकट भी है, जब जब आपके आगे टेम्पटेशन आए, जब जब आपको पता हो कि मैं एक रिलेशनशिप में आने वाला हूँ लेकिन मैं बस इसकी बॉडी से, इसके पैसों से या फिर किसी शैलो चीज़ से ही अट्रैक्टेड हूँ और ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, आपके अंदर ये चीज़ आ चुकी है लेकिन आप फिर भी बोलते हो कि नहीं मेरे को मज़ा चाहिए, मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए मज़ा चाहिए, जब जब आप इस कॉन्शियस वाली आवाज़ को, जब आपको पता होता है कि ये चीज़ सही है, आप मस्ती को चूज करते हो, आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग में अटक जाते हो, तब तब आप लॉन्ग टर्म में अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा शैलो बना लेते हो, और तब आप ये बोलते हो कि मैं बस बिलीव करता हूँ या फिर नहीं करता। बिलीव की बात ही नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। जो भी बंदा बस बिलीफ पे अटका हुआ है वो बेवकूफ़ है, वो एक्चुअल में लाइफ को जी नहीं रहा, वो बस लाइफ को जीने की बातें कर रहा है कि लाइफ ऐसी होगी, लाइफ वैसी होगी, वो एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है, वो बस अपने दिमाग में अटका हुआ है। तो जब भी हम बोल रहे हैं गॉड को अपने साथ लेके चलो, उसका मतलब ये है कि गलत रास्ता मत चूज़ करो, सही रास्ता चूज़ करो, और अपना एक्सपीरियंस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंटेंस बनाओ। शैलो लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। शैलो लाइफ अगर जीनी है तो उसका मतलब यह कि आप लाइफ से प्यार ही नहीं करते हो, आप बेसिकली डेड हो, और लॉन्ग टर्म में आप अपनी सही और गलत को समझने की एबिलिटी भी खो देते हो। बिकॉज जब भी आप कोई सही काम करते हो, जब भी आप किसी सही प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, तब आपके अंदर से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ सौरभ तू सही रास्ते पर है। आपको कोई बाहर से तालियां नहीं चाहिए होती, आपको किसी एडवाइस नहीं चाहिए होती, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी होती, आपको बस अपने एक्सपीरियंस को देखना होता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या मेरा एक्सपीरियंस शैलो होता जा रहा है या फिर क्या मेरा एक्सपीरियंस और प्रोफाउंड होता जा रहा है। आप ये चीज़ करके देख सकते हो, जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। अगले 30 दिन तक बस सच बोलो, अगले 30 दिन तक जो आपको पता है कि ये राइट थिंग है, ये चीज़ मेरे को करनी चाहिए, वही चीज़ करो, और फिर बताओ कि क्या होता है आपकी लाइफ में। ऑफकोर्स आपकी लाइफ और ज़्यादा मुश्किल होगी, बट आपके साथ क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? आप अपने फेवर में अपनी लाइफ क्रिएट कर पाओगे, आप अपने गोल्स के पास पहुंच पाओगे, या फिर आपकी लाइफ और ज़्यादा वर्स होगी? ये चीज़ करो और मेरे को बताओ। एक महीना इस चीज़ को फॉलो करो और वापस से यहाँ पर आके कमेंट करो कि हाँ सौरभ मेरे साथ ये हुआ। लेसन नंबर 9, पीपल फ्रीडम एंड रूल्स आर इजली बॉट, सो गेट रिच। पहले के ज़माने में एक वाइज पेरेंट अपने बच्चों को ये एडवाइस दे सकता था कि बेटा पैसा हर चीज़ नहीं होती, और अगर तुम उतना पैसा नहीं कमा रहे तो दैट्स ऑल्सो ओके। बट आज के ज़माने में जहाँ ज़्यादातर लोग करप्ट हैं और ज़्यादातर लोग पैसों को वैल्यू करते हैं, उनका भगवान ही पैसा है, ऐसी सोसाइटी में अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को पैसा थोड़ी डिफाइन करता है, मेरा जो वर्थ है वो मेरे कैरेक्टर से, मेरी पर्सनैलिटी से और जो भी मैं काम करता हूँ दुनिया में उससे मेजर होती है, वो बताता है कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ, विच इज़ ट्रू। बट आपकी सोसाइटी में जितने लोग हैं, 99% लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। वो यही मानेंगे कि जो आपका बैंक बैलेंस है वही आप हो, आपकी रिफ्लेक्शन आपकी बैंक बैलेंस में, आपके वॉलेट में दिखती है। तो ऐसी सोसाइटी के बीच जहाँ पर आपको दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, जहाँ पर आपको दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब होगा, अगर आप ऐसी सोसाइटी में ये बोल रहे हो कि पैसा मैटर नहीं करता, या फिर अगर मैं रिच होने की तैयारी नहीं भी कर रहा तो दैट्स ओके, ये चीज़ गलत है। आपको रिच होना है एंड इट इज़ अ नेसेसिटी। 2024 में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आपके पास इनफ पैसा हो फ्रीडम के लिए, और जो भी फालतू की लोग बात कर रहे होते हैं उनका मुंह बंद कराने के लिए। लेसन नंबर 10, इफ यू वांट टू चेंज समवन्स बिहेवियर, गिव देम लव टू ड्रॉप ऑल देयर डिफेंसेस। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, बिकॉज जो मेरा आउटर अपीयरेंस है, जो मेरा पब्लिक पर्सोना है और जो मेरे एक्सप्रेशंस होते हैं, उनसे यही लगता है कि मैं पत्नी कितना गुस्से वाला हूँगा। इवन एक रिसेंट कमेंट आया था मेरी वीडियो पे कि ये इंसान तो शक्ल से मिसोजिनिस्टिक लगता है। बट बात ये होती है कि हमें ना तो लोगों की अपीयरेंस देखनी है, ना ही हमें उनके बस वर्ड्स पर ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है लोगों के एक्शंस कैसे हैं। और जो लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा इंसान एक्चुअल में आपका भला चाहता है, कौन सा इंसान बस अपना मतलब चाहता है, वो इंसान सबसे ज़्यादा सबसे पहले मैनिपुलेट होते हैं। बिकॉज हर इंसान को प्यार चाहिए, और जो इंसान मेरे को देखते हुए ये बात समझ जाता है कि मैं एक्चुअल में आपका भला चाहता हूँ, वो इंसान ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है, वो अपने डिफेंसेस को गिरा देता है। हर किसी को प्यार चाहिए, और जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपका पार्टनर है, जो कोई भी बात सुनता नहीं है, वो टॉक्सिक हो गया है या फिर कुछ ना कुछ उसमें गलत बिहेवियर आ गया है, कोई गलत हैबिट उसने डेवलप कर लिया है, तो ऐसे इंसान को चेंज करने के लिए बेस्ट चीज़ होती है लव। बिकॉज अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर है, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए आप उसे क्या करोगे, आप उसके एक्सपीरियंस को इंटेंसिफाई करोगे, आप उसे बताओगे कि जो भी तू एक्सपीरियंस ले रहा है वो शैलो ही रहेगा, जिस राह पे तू चल रहा है वो राह ही गलत है। बट कोई भी इंसान आपकी बात तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसको यही लगता रहेगा कि आप बस अपना मतलब निकाल रहे हो। इवन मार्केटिंग की दुनिया में एक काफ़ी पॉपुलर कोट है जो स्टूडेंट्स के आगे यूज़ करा जाता है उनको ये सिखाने के लिए कि कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं। एंड द कोट इज़, दे डोंट केयर हाउ मच यू नो अनटिल दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना पता है, अनटिल उनको ये पता लग जाए कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है उनके बारे में। मतलब अगर मैं आपको ये कन्विंस कर पाऊँ कि मेरे को आपकी पड़ी है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ग्रो करो, तो आपकी जो लाइकलीहुड है मेरी कोई भी चीज़ बाय करने की वो चीज़ बढ़ जाती है। और जो सेल्समैन होते हैं, आपने उनको अक्सर देखा होगा, उनके मुंह पर हमेशा एक फेक स्माइल होगी। इतने सारे जो ऑनलाइन गुरुज होते हैं हमेशा बड़ी सी स्माइल लेकर घूम रहे होते हैं, बिकॉज जब भी हम किसी को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, जब भी हम ये दिखाते हैं कि मैं तो तुम्हारे साइड पर ही हूँ, तब उसके डिफेंसेस गिर जाते हैं, उसकी नो कम हो जाती है. और जो भी एक इंसान बेच रहा होता है, चाहे वो एक सेल्समैन हो, एक बिजनेसमैन हो, या फिर एक रिलेशनशिप की हम बात करें, तब सामने वाला इंसान आपकी सुनने लगता है. जो भी आप बोल रहे हो वो उस पर ज़्यादा अटेंशन पे करता है. सो ये थे मेरे कई लाइफ लेसन्स जो मैंने खुद की लाइफ से सीखे हैं. और इस इन्फॉर्मेशन के साथ अब क्या करना है ये टोटली आपके ऊपर है. और अगर किसी इंसान ने ये पूरा एपिसोड एंड तक देखा है देन आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. बिकॉज अगर कोई भी इंसान इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर इसे इंटरनलाइज करता है तो सेम रह ही नहीं सकता. आपके अंदर कोई ना कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा ही आएगा.